तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सामने माया एंजेलो की आत्मकथा श्रृंखला की चौथी किताब है, द हार्ट ऑफ अ वुमन, और इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं।
जी,
ये स्रोत उनके जीवन के, मतलब 1957 से 1962 के जो साल थे उन पर रोशनी डालते हैं। काफी अहम साल थे ये।
बिल्कुल, बहुत ही उथल पुथल वाले साल।
हाँ, एक ऐसा दौर जब वो सिर्फ कलाकार या माँ नहीं रहीं, बल्कि उनकी पहचान की कई परतें खुल रही थीं। तो कोशिश ये है कि इन स्रोतों से वो खास बातें निकालें जो बताती हैं कि इस दौरान एक कलाकार, माँ, एक्टिविस्ट और एक व्यक्ति के तौर पर उनमें क्या बड़े बदलाव आए।
बिल्कुल, और ये 5 साल उनके जीवन का एक तूफानी दौर थे। जैसा आपने कहा, स्रोत बताते हैं कि कैसे एंजेलो की निजी दुनिया, उनका बेटा, उनका प्यार, उनकी कला और बाहरी दुनिया,
जैसे अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन,
हाँ, और अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम, ये सब एक दूसरे में जैसे उलझते चले गए। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे व्यक्तिगत इच्छाएं और राजनीतिक आदर्श एक साथ चलते हैं, कभी तालमेल में तो कभी टकराव में।
हाँ, और इस स्रोत में ये बात कितनी सटीक लगती है कि एक महिला के दिल में मातृत्व की अंतरंग लय क्रांति के वैश्विक ढोल के साथ ताल मिला सकती है।
क्या बात है।
तो चलिए फिर इसमें और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं एंजेलो की ये यात्रा न्यूयॉर्क के कला जगत से लेकर नागरिक अधिकार आंदोलन की एकदम अगली कतारों तक।
और फिर अमेरिका से अफ्रीका, वो भी एक बड़ा कदम था।
हाँ, अफ्रीका के राजनीतिक और व्यक्तिगत उथल-पुथल भरे माहौल तक ये हमें उनके और उस दौर के बारे में क्या सिखाती हैं।
यहाँ ये याद रखना जरूरी है, जैसा पहले भी कहा, कि ये स्रोत महज घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये एक अंदरूनी जागृति की कहानी भी कहते हैं।
अच्छा,
मतलब कैसे एंजेलो ने कला, मातृत्व, प्यार और वैश्विक राजनीति के इस जटिल जाल को हिम्मत और ईमानदारी से जिया। इसमें उनकी सफलताएं भी हैं और मोहभंग भी।
तो कहानी शुरू होती है 1957 में। सुनने में आता है कि एंजेलो और उनका बेटा गाय कैलिफोर्निया में एक हाउसबोट पर रह रहे हैं। थोड़ी शांत, अलग थलग जिंदगी।
जी, वो लिखने पर ध्यान देना चाहती थी और अपने बेटे को दुनिया की मुश्किलों से जैसे बचा कर रखना चाहती थी।
हाँ, ये उनके पिछले जीवन से काफी अलग था, जो एक परफॉर्मर का भागदौड़ वाला जीवन था।
हाँ, पर ये शांति, वो एक सतह ही थी, अंदर एक बेचैनी थी, कुछ और बड़ा करने की, कुछ और सार्थक करने की चाहत। तभी उनकी मुलाकात होती है महान गायिका बिली हॉलिडे से। हाँ, और हॉलिडे, जिनका अपना जीवन त्रासदियों से भरा था, वो एंजेलो को न्यूयॉर्क शहर की चुनौतियों और खतरों के बारे में चेताती भी हैं।
अच्छा, जैसे भविष्य की एक चेतावनी।
बिल्कुल, जैसे आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही हो। और इस पूरी उथल पुथल में उनका बेटा गाय, वो लगातार उनकी जिंदगी का केंद्र बना रहता है।
और फिर 1958 में वो न्यूयॉर्क शहर आ ही जाती हैं।
हाँ, और यहीं से उनके जीवन का एक नया, ज्यादा तेज दौर शुरू होता है। ओलिवर किलिंस जैसे अनुभवी लेखक, इनके बीच उनके लेखन को एक नई धार मिलती है, उनके विचारों को चुनौती मिलती है।
तो ये सिर्फ लिखना सीखना नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उस अश्वेत बौद्धिक समुदाय के बीच अपनी आवाज को खोजना था, उसे तराशना था।
और इसी माहौल में उनकी राजनीतिक चेतना भी तेजी से जागती है।
बहुत तेजी से। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक भाषण सुनने के बाद वो इतनी प्रभावित होती हैं कि अब वो सिर्फ सहानुभूति रखने वाली कलाकार नहीं रहती।
अच्छा,
वो सक्रिय रूप से आंदोलन का हिस्सा बनने का फैसला करती हैं। वो डॉक्टर किंग के संगठन SCLC, सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस,
जी, जो अहिंसक तरीके से नागरिक अधिकारों की लड़ाई का मुख्य केंद्र था,
बिल्कुल, उसकी वो नॉर्दर्न कोऑर्डिनेटर बन जाती हैं।
अच्छा,
ये एक बहुत बड़ा कदम था उनके लिए। उन्होंने वो पहचान पीछे रखकर एक आयोजक की भूमिका अपना ली।
उन्होंने कैबरे फॉर फ्रीडम जैसा सफल कार्यक्रम भी आयोजित किया था, है ना?
जी हाँ, जिसने न केवल आंदोलन के लिए पैसा जुटाया बल्कि एक कुशल आयोजक के रूप में उनकी धाक भी जमा दी। ये कला के मंच से सीधे राजनीतिक एक्शन के मैदान में उतरना था।
लेकिन कला पीछे ले छूटी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी दौरान उन्हें जीन जेनेट के चर्चित नाटक द ब्लैक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली।
ओह, जिसमें जेम्स अर्ल जोन्स और सिसली टाइसन जैसे सितारे भी थे।
हाँ, बिल्कुल, और नाटक के सेट पर ही उनकी मुलाकात होती है वुसुमजी मेक से,
जो दक्षिण अफ्रीका के एक स्वतंत्रता सेनानी थे।
जी, और ये रिश्ता सिर्फ रोमांटिक नहीं था, ये राजनीतिक भी था। इसमें एंजेलो के दिल की आवाज और उनके जो उभरते हुए पैन अफ्रीकी आदर्श थे।
मतलब ये विचार कि दुनिया भर के अफ्रीकी मूल के लोगों का एक साझा संघर्ष है।
बिल्कुल, उन आदर्शों का मिलन था, उनकी शादी ने उन्हें अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के दायले से निकालकर सीधे अंतर्राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों के बड़े मंच पर पहुंचा दिया।
किताब का अगला बड़ा हिस्सा फिर अफ्रीका में खुलता है।
हाँ?
1961 में एंजेलो अपने बेटे गाय के साथ वुसुमजी मेक के पास काहिरा मिस्र चली जाती हैं।
जी, उम्मीदों से भरी हुई एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी बनकर अफ्रीकी महाद्वीप के संघर्षों से जुड़ने को लेकर उत्साहित।
लेकिन मुझे लगता है जैसा अक्सर होता है जमीनी हकीकत शायद उम्मीदों से काफी अलग निकली होगी।
बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि काहिरा में उन्हें राजनीतिक शरणार्थियों का एक जोशीला माहौल तो मिलता है लेकिन वो चुनौतियों से भरा भी था।
कैसी चुनौतियाँ?
उन्हें अपरिचित सांस्कृतिक रिवाजों का सामना करना पड़ता है और हैरानी की बात है कि क्रांतिकारी माने जाने वाले मर्दों के बीच भी मौजूद लिंग भेद का सामना करना पड़ता है।
ओ?
उनकी शादी जो इतने आदर्शों और प्यार के साथ शुरू हुई थी वो मैक के कंट्रोल करने वाले रवैये और एक पारंपरिक पत्नी की अपेक्षाओं के बोझ तले धीरे धीरे दबने लगती है। साझा राजनीतिक लक्ष्य होने के बावजूद व्यक्तिगत स्तर पर तालमेल बैठाना मुश्किल साबित होता है।
ये मोहभंग तो बहुत बहुत पीड़ादायक रहा होगा, ये समझना कि राजनीतिक आदर्श व्यक्तिगत संबंधों की गारंटी नहीं देते।
हाँ,
लेकिन यहाँ भी एंजेलो का चरित्र उभर कर आता है। सुनने में आता है कि उन्होंने हार नहीं मानी।
बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपने पति को छोड़ने का कठिन फैसला लिया।
और इसके बाद क्या वो अमेरिका लौट गई?
नहीं, यही उनकी हिम्मत दिखती है। वो घर नहीं लौटी, उन्होंने काहिरा में ही टिके रहने का फैसला किया।
अकेले?
हाँ, और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए फौरन काम की तलाश शुरू कर दी। अपनी अंग्रेजी भाषा की कुशलता और लेखन क्षमता के दम पर उन्हें द अरब ऑब्जर्वर नाम के अंग्रेजी अखबार में एसोसिएट एडिटर की नौकरी मिल गई।
वाह, ये तो उनकी आत्मनिर्भरता का एक बड़ा प्रमाण था।
बिल्कुल, उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ किसी की पत्नी नहीं बल्कि अपने आप में एक सक्षम व्यक्ति हैं।
और तभी एक और बड़ा संकट आता है, उनके बेटे गाय का एक खतरनाक कार एक्सीडेंट।
हाँ,
इसने तो उन्हें पूरी तरह झकझोर दिया होगा।
हाँ, ये घटना उनके जीवन में फिर से मातृत्व को सबसे आगे ले आई। सारे राजनीतिक, कलात्मक और व्यक्तिगत संघर्ष जैसे पीछे छूट गए,
डर और अपराध बोध।
हाँ, उसी के बीच उन्होंने अपना पूरा ध्यान गाय की देखभाल में लगा दिया। डॉक्टरों की बेहतर इलाज की सलाह पर वो गाय को लेकर अकरा, घाना जाने का फैसला करती हैं,
जो उस समय अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी और मेडिकल सुविधाओं के लिए जाना जाता था।
जी हाँ, और किताब यहीं खत्म होती है जब वो घाना में एक अनिश्चित भविष्य की दहलीज पर खड़ी हैं।
तो इन 5 सालों में एंजेलो कहां से कहां पहुंच गई? कैलिफोर्निया की शांत हाउस बोट से न्यूयॉर्क की राजनीतिक गहमागहमी, फिर कायरा का मोहभंग और अंत में घाना की ओर एक नई शुरुआत। ये यात्रा वाकई असाधारण है ना?
बिल्कुल असाधारण।
इन घटनाओं के पीछे एंजेलो की सोच, उनके मूल्य क्या थे, चलिए थोड़ा इस पर गौर करते हैं।
निश्चित रूप से इन स्रोतों से जो एक मुख्य दर्शन उभरता है वो है संघर्षों का जुड़ाव और पहचान का विस्तार।
मतलब?
मतलब एंजेलो धीरे धीरे ये समझने लगती हैं कि अमेरिका में अश्वेतों की आज़ादी की लड़ाई कोई अलग थलग मुद्दा नहीं है, ये दुनिया भर में उपनिवेशवाद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ चल रहे बड़े आंदोलन का एक हिस्सा है।
खासकर पैन अफ्रीकी आंदोलन का?
हाँ बिल्कुल, उनका अफ्रीका जाना इसी बढ़ती हुई वैश्विक चेतना का प्रतीक था। ये समझना कि उनकी व्यक्तिगत पहचान एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और वैश्विक संघर्ष से जुड़ी है।
और मुझे लगता है इसमें एक नारीवादी दृष्टिकोण भी है, भले ही वो उस शब्द का इस्तेमाल ना करे उस तरह से।
आप सही कह रहे हैं,
वो अश्वेत मुक्ति के लिए लड़ रही हैं, लेकिन उस लड़ाई के अंदर भी वो अपनी आवाज, अपनी पहचान को पुरुषों के वर्चस्व के नीचे दबने नहीं देना चाहती।
हाँ।
मैक के साथ उनके रिश्ते का टूटना भी इसी संघर्ष को दिखाता है। वो क्रांतिकारी आदर्श और निजी जीवन में पितृसत्तात्मक अपेक्षाएं, उनके बीच का तनाव।
बिल्कुल सही कहा, वो जैसे कह रही हों कि एक औरत का दिल सिर्फ किसी मर्द की कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं।
सही बात।
और कला उनके लिए सिर्फ खुद को व्यक्त करने का जरिया नहीं रहती, वो सामाजिक टिप्पणी करने, चेतना जगाने और इतिहास को दर्ज करने का एक ताकतवर हथियार बन जाती है।
तो उनका लेखन और उनकी सक्रियता दोनों साथ साथ चलते हैं।
हाँ, उनका लेखन उनकी सक्रियता को दिशा देता है और उनकी सक्रियता उनके लेखन को गहराई देती है, एक दूसरे को मजबूत करते हैं।
इन सब के पीछे उनकी प्रेरणाएं क्या थीं? क्या चीज उन्हें आगे बढ़ा रही थी इतनी मुश्किलों में भी?
स्रोत 3 मुख्य प्रेरणाओं की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे मजबूत प्रेरणा है मातृत्व।
उनका बेटा गाय।
हाँ गाइस, पूरी कहानी का भावनात्मक केंद्र है। न्यूयॉर्क जाना हो, मैक्स से शादी करना हो, अफ्रीका जाना हो या फिर घाना जाने का फैसला, हर बड़ा कदम गाय की भलाई और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया लगता है।
गाय का एक्सीडेंट उन्हें फौरन माँ की भूमिका में खींच लाता है।
बिल्कुल, जो दिखाता है कि बाकी सब चीजों के बावजूद उनका दिल सबसे पहले एक माँ का दिल था।
ये बात तो बहुत साफ दिखती है। दूसरी प्रेरणा क्या थी?
दूसरी प्रेरणा थी एक उद्देश्य की तलाश, जीवन में सार्थकता की खोज। वो सिर्फ एक कलाकार बनकर संतुष्ट नहीं थी, उन्हें लग रहा था कि उन्हें कुछ और करना है, कुछ बड़ा योगदान देना है।
ये तलाश उन्हें पहले हार्लेम राइटर्स गिल्ड ले गई, जहां उन्हें कला के जरिए उद्देश्य मिला, और फिर SCLC में, जहां राजनीतिक एक्शन में उद्देश्य मिला। वो अपने आप से बड़े किसी मकसद का हिस्सा बनना चाहती थी।
और तीसरी प्रेरणा
शायद प्यार और एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उनके विचारों और जुनून को समझे।
हाँ बिल्कुल, तीसरी प्रेरणा थी प्यार और एक गहरे जुड़ाव की खोज। वो सुमज्यू मेघ के साथ उनका रिश्ता इसी इच्छा से पैदा हुआ था, एक ऐसा साथी जो उनके राजनीतिक आदर्शों को साझा करे, जो उनके बौद्धिक स्तर का हो।
हालांकि वो रिश्ता कामयाब नहीं हुआ।
हाँ कामयाब नहीं हुआ, लेकिन ये उनकी उस चाहत को दिखाता है कि वो एक ऐसा साथी चाहती थी जिसके साथ वो दिल और दिमाग दोनों स्तर पर जुड़ सके।
जब मुश्किलें आईं, जैसे कि मे के साथ अलगाव या गाय का एक्सीडेंट, तो उनका सामना करने का तरीका भी खास था। उसमें क्या खास बात नजर आती है?
उसमें एक तरह का व्यावहारिक लचीलापन दिखता है, जिसे अंग्रेजी में प्रैग्मैटिक रेजिलियंस कह सकते हैं।
जैसे?
जैसे काहिरा में जब शादी टूटती है तो वो बिखर कर बैठ नहीं जाती, वो हालात का जायजा लेती हैं और फौरन अपने पैरों पर खड़े होने का रास्ता निकालती हैं, नौकरी ढूंढती हैं।
दुख तो होता होगा पर वो उसे हावी नहीं होने देती।
हाँ बिल्कुल, इसे शायद आज की भाषा में कहें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच।
और साथ ही वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती हैं, इसे हम क्या कहें, बौद्धिक साधन संपन्नता कह सकते हैं,
इंटेलेक्चुअल रिसोर्सफुलनेस।
हाँ अच्छा शब्द है। जैसे दी अरब ऑब्जर्वर में नौकरी पाना, ये किसी पहचान या सिफारिश से नहीं हुआ, उन्होंने अपनी भाषा और लेखन क्षमता का प्रदर्शन करके ये अवसर हासिल किया। वो मुश्किल हालात में अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाती हैं।
और आखिरकार एक तरह की कट्टर किस्म की आत्मनिर्भरता विकसित होती है उनमें, रेडिकल सेल्फ रिलायंस।
बिल्कुल, वो सीखती हैं शायद दर्दनाक तरीके से कि अंत में वो सिर्फ खुद पर ही निर्भर रह सकती हैं। शादी का टूटना इस सबक को और पुख्ता करता है।
लेकिन ये एहसास उन्हें कमजोर नहीं बनाता।
नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। वो हालात का शिकार बनने से इनकार करती हैं।
अब उन खास घटनाओं या मोड़ों पर बात करते हैं जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। पहला तो जाहिर तौर पर डॉक्टर किंग का भाषण सुनना रहा होगा, है ना? निश्चित रूप से, वो एक चिंगारी जैसा था जिसने उनकी सोई हुई राजनीतिक चेतना को जैसे जला दिया। डॉक्टर किंग के शब्दों और उनके नैतिक बल ने आंदोलन के विचार को उनके लिए एक निजी और जरूरी आवाहन बना दिया।
तो सोचने वाली कलाकार से एक्शन लेने वाली एक्टिविस्ट बन गई।
बिल्कुल,
और इसी के बाद कैबरे फॉर फ्रीडम का आयोजन हुआ, जिसने उन्हें सीधे SLC के साथ जोड़ दिया और संगठनकर्ता के रूप में एक नया रास्ता खोल दिया। दूसरा बड़ा मोड़ क्या था?
दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ था हार्लेम राइटर्स गिल्ड में शामिल होना। ये पहली बार था जब वो पूरी तरह से अश्वेत साहित्य और लेखकों को समर्पित एक माहौल का हिस्सा बनी। यहाँ उन्हें लिखने के लिए जरूरी अनुशासन मिला, रचनात्मक आलोचना मिली, और सबसे बढ़कर ये विश्वास मिला कि उनकी अपनी कहानी, उनका अपना नजरिया मायने रखता है।
इसने एक लेखक के रूप में उनकी पहचान को मजबूत किया होगा।
हाँ, और शायद भविष्य में आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स जैसी महान कृति की नींव भी यहीं रखी गई।
और तीसरा निर्णायक मोड़, क्या वो वुसुमजी मेक से शादी और अफ्रीका जाना था?
हाँ, मेरे ख्याल से वही था। ये उनके निजी और राजनीतिक जीवन का एक बड़ा संगम था और एक बड़ा जुआ भी।
जुआ?
हाँ, क्योंकि मेक में उन्हें वो वैश्विक अश्वेत संघर्ष दिखा जिसकी ओर वो खींची जा रही थी। अफ्रीका जाना प्यार, विश्वास और राजनीतिक प्रतिबद्धता का कदम था। लेकिन
इस शादी का टूटना भी उतना ही परिवर्तनकारी साबित हुआ।
बिल्कुल, इसने उनके नजरिए को अंतर्राष्ट्रीय बनाया। उन्हें पैन अफ्रीकनिज्म की जटिलताओं, निर्वासन की जिंदगी और क्रांतिकारी आंदोलनों के अंदरूनी सच से रूबरू कराया।
शादी के दर्दनाक अंत ने उन्हें आत्मनिर्भरता का कड़वा लेकिन जरूरी सबक सिखाया।
हाँ, और क्रांतिकारी आदर्शों और जमीनी हकीकत, खासकर पितृसत्ता के बीच के तनाव को उजागर किया। इसने उनके कुछ भ्रम तोड़े, लेकिन उन्हें एक ज्यादा मजबूत और स्वतंत्र इंसान बनाया।
गाय का एक्सीडेंट भी एक तरह का मोड़ ही था, भले ही वह संकट के रूप में आया, उसने उनकी प्राथमिकताएं बदली और उन्हें घाना ले गया। ये सारे अनुभव सिर्फ माया एंजेलो के नहीं हैं, इनमें हम सबके लिए भी कुछ सीखने को है, है ना?
बिल्कुल, पहली सीख तो वही है, लचीलापन, रेजिलियंस।
हाँ,
एंजेलो की कहानी दिखाती है कि मुश्किलें अंत नहीं होती, बल्कि दिशा बदलने या खुद को और मजबूत बनाने का मौका हो सकती हैं। काहिरा में अकेले पड़ जाने पर भी उन्होंने रास्ता निकाला। ये हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कर्मठ बने रहना कितना जरूरी है।
दूसरी बात जो मुझे समझ आती है वो है पहचान की बहुलता, मतलब हम कई चीजें एक साथ हो सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, एंजेलो हमें दिखाती हैं कि हमें खुद को किसी एक खांचे में बांधने की जरूरत नहीं है। वो माँ थीं, कलाकार थीं, एक्टिविस्ट थीं, पत्नी थीं, और ये सब भूमिकाएं एक साथ चल रही थीं।
एक दूसरे को काट नहीं रही थीं, बल्कि उनकी पहचान को और समृद्ध बना रही थीं।
जी, जिंदगी लगातार बनते रहने की एक प्रक्रिया है।
और ये भी कि निजी जीवन हमेशा राजनीतिक होता है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल।
हाँ, ये बहुत अहम बात है। उनका साथी चुनना, अफ्रीका जाना, शादी के अंदर अपनी आज़ादी के लिए लड़ना, ये सब निजी फैसले थे, लेकिन इनके गहरे राजनीतिक और सार्वजनिक मायने थे। ये बात आज भी उतनी ही सच है। हमारी निजी चुनाव भी बड़े सामाजिक और राजनीतिक ढांचे का हिस्सा होते हैं।
समुदाय का महत्व भी उभर कर आता है ना?
बहुत ज़्यादा, चाहे हालिम राइटर्स गिल्ड हो या नागरिक अधिकार आंदोलन के साथी, उनका विकास अकेले में नहीं हुआ। एक सहायक समुदाय जहां विचारों का आदान प्रदान हो, जहां समर्थन मिले, वो व्यक्तिगत और सामुदायिक तरक्की के लिए बहुत जरूरी है।
और आखिर में असफलता को अंत ना समझना।
हाँ, चाहे वो रिश्ते की नाकामी हो या करियर की चुनौतियां, एंजेलो ने असफलताओं को सीखने के अवसर की तरह देखा, न कि अपने ऊपर एक स्थायी ठप्पे की तरह। ये नजरिया लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है।
तो इन स्रोतों के जरिए हमने माया एंजेलो के जीवन के उन 5 बेहद अहम और तूफानी सालों 1957 से 1962 को समझा।
जी,
हमने देखा कि कैसे एक कलाकार का दिल एक्टिविस्ट के दिल से जुड़ा, कैसे मातृत्व उनके हर फैसले की धुरी बना रहा,
और कैसे प्यार की निजी तलाश उन्हें दुनिया भर के मुक्ति संग्रामों से जोड़ती गई, भले ही वो जुड़ाव चुनौतियों और मोहभंग से भरा रहा।
हाँ, काहिरा और फिर घाना जाना सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये उनकी चेतना का विस्तार था।
बिल्कुल, ये स्रोत हमें इंसान होने के कई गहरे पहलुओं पर सोचने को मजबूर करते हैं। जैसा हमने बात की, लचीलापन एक बड़ा सबक है, मुश्किल हालात में हार मानने की बजाय रास्ता खोजना।
ये सिर्फ एक गुण नहीं, ये एक एक्शन है, एक चुनाव है।
सही कहा।
हाँ, और इन स्रोतों से जो 3 मुख्य बातें हम याद रख सकते हैं वो शायद ये हैं। पहला, भावनात्मक सबक।
वो है मातृत्व की अदम्य शक्ति।
हाँ, गाय उनके जीवन का भावनात्मक लंगर थे, उनका हर जोखिम, हर बड़ा फैसला गाय की भलाई के इर्द गिर्द घूमता था। ये दिखाता है कि एक महिला का दिल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी सबसे गहरी धड़कन अक्सर उसके बच्चे के लिए होती है।
दूसरा, बौद्धिक सबक है संघर्षों का आपसी जुड़ाव।
अच्छा,
एंजेलो की समझ विकसित होती है कि अमेरिका में अश्वेतों की लड़ाई अकेली नहीं है, ये दुनिया भर में उपनिवेशवाद और नस्लीय दमन के खिलाफ चल रहे बड़े संघर्ष का हिस्सा है। व्यक्तिगत पहचान वैश्विक इतिहास से जुड़ी है, ये एक गहरी बौद्धिक समझ थी।
और तीसरा, एक सार्वभौमिक सबक।
वो है गिरने के बाद उठ खड़े होने की क्षमता।
हाँ, मिक से अलगाव के बाद अकेले दम पर काहिरा में जीवन बनाना सिखाता है कि निराशा के बाद भी जिंदगी को दोबारा गढ़ा जा सकता है, असफलता अंत नहीं बल्कि रास्ता बदलने या खुद को फिर से खोजने का एक मौका हो सकता है। यह हम सबके लिए उम्मीद की किरण है।
और एक आखिरी विचार जो इन स्रोतों से मन में उठता है वो ये है कि एंजेलो ने इतिहास के उन बड़े पलों और आंदोलनों को एक महिला के नजरिए से जिया और लिखा है।
वो नजरिया जो अक्सर पुरुषों की लिखी कहानियों में खो जाता है।
बिल्कुल, उनके अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक आदर्शों और निजी जीवन की सच्चाइयों, खासकर जब उनमें पितृसत्ता की परतें हों, के बीच कैसा तनाव हो सकता है।
ये इतिहास को सिर्फ घटनाओं के क्रम की तरह नहीं देखता,
नहीं, बल्कि इंसानी अनुभवों के जटिल बुनावट के रूप में देखने का नजरिया देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी निजी कहानियां कैसे बड़े इतिहास को आकार देती हैं और कभी कभी उसे चुनौती भी देती हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।